جب اللہ اکبر بول کے رکعت باندھا تو اپنی اسی بالکل متوجہ ہو جانا خداوند عالم کی طرف، کسی کا خیال دل میں نہیں آنا، کوئی بات اور کسی طرح نظر نہیں جانا، نظر نیچی رہنا، خیال ایک تو رہنا. یہاں تو ہماری نمازوں کا عالم ہے کہ اللہ اکبر بول کے رکعت باندھے، اس کے بعد کبھی خیال گھر میں ہے، کبھی بازار میں ہے، کبھی خدا جانے کیسے کیسے خراب مقامات ہیں. سورہ فاتحہ پڑھے، پڑھا سورہ فاتحہ پورا نہیں یاد نہیں، لمبے سورہ کیا یا نہیں یاد نہیں، سبحان ربی العظیم برابر کی سے بولا یا نہیں بولا یاد نہیں. بار بار دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رکھا تو پڑھا ہی نہیں پڑھا، میں نے وہ بھی ذہن میں لیا. تو ایسی نماز کیا بارگاہ رب العزت میں قابل قبول ہے؟ کیا اس کا کوئی اجر مانگ سکتا ہے، مل سکتا ہے؟ تو کون کا کرم ہے جو اس سے چھوٹی چھوٹی نمازوں کو قبول نہ مانے؟ یہ ان کی عنایت ہے، مہربانی ہے ان کی. اسی طریقے سے روزے کا حال ہے، روزہ ہے، بھوکے بھوکے رہے، پیاسے رہے، لیکن روزہ کیسا ہونا، خدا کے لیے ہونا تھا. کیا روزہ ہوا یا ہوتا ہے؟ کبھی اپنے روزے کو آپ سوچتے ہیں، حقیقت یہی ہے ہر انسان کو اپنے اعمال کا ہاتھ جائزہ لینا چاہیے، دوسرے کے اعمال کا جائزہ لینے کا حق نہیں. آج کل کی بیماری ہمیں بہت زیادہ عام ہوئی ہے کہ ہم دوسروں کا جائزہ لیتے ہیں، اپنا جائزہ نہیں لیتے. اپنا جائزہ لیتے، اپنے اعمال کا آپ جائزہ لو. کبھی دستہ تھا پڑے ہوئے سوچو آج صبح سے اب تک کتنے نمازے پڑھا، پہلے تو وہ بھی نہیں ہوتے. فرض فرض جو فرض رکھا گیا ہے اس کی تکمیل ہی نہیں ہوتی، اور جو ہوگی بھی تو ہی سمجھ. تو کیا یہ نمازیں، کیا یہ روزے قابل قبول ہیں؟ کیا اس پر کچھ اجر مل سکتا ہے؟ کیا یہ منہ پر کہیں گے جانے کے حالے بلکہ حساب کے مستحق کہ بدتمیز میری بارگاہ میں آیا، میرے دربار میں آ رہے تھے، مجھے گزار رہے حالت میں. وہ کرم ہے رحمت العالمین کا، سب کا ہے، کسی کی پیاری صورت سامنے ہے، ان کے طرف سے ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں بھی قبول ہو رہی ہیں، روزے بھی قبول ہو رہے ہیں، دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں، سب کا ہے ان کے. سرکار عالم کی صورت سامنے ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے. مثال کے طور پر اولاد کی اولاد یا اولاد کے پاس کا ملازم، وہ اگر کوئی آگے غلطی بھی کرے تو اس کو نظر انداز کر کے کیا یہ خطا ہو جائے، بچے کو نہ گوا دے. حالانکہ اس کی خطا اس قابل ہے کہ گریف کی جائے، سزا دی جائے، لیکن اس کو سزا سے درگزر کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کے بچہ تو ویسی ہم پر جو کرم ہو رہا ہے تو رحمت اللہ علیہ کی پیاری صورت سامنے ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما رہا ہے، درگزر فرما رہا ہے، نہ صرف درگزر فرما رہا ہے بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اس سے زیادہ ادا فرما، اس سے زیادہ سفرادی ہو رہی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھو اپنی دعاؤں میں، اپنے کاروبار میں، سب میں سب سے پہلے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو، کہ جہاں ان کا ذکر مبارک ہوتا ہے اللہ کے رسول. بہرحال یہ رمضان کا مہینہ، تو رمضان کس کا مہینہ ہے؟ غلامان محمد کا مہینہ ہے. کیا ہے اس مہینے میں؟ اس مہینے میں غلامان محمد کے لیے کرم کی بارش ہے، رحمتوں کی بارش ہے. رمضان کی ہر رات میں ہزاروں انسان گناہگار بخشے گئے، اور رمضان کریم کی آخری رات میں تو پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے وہ آخری رات میں جتنے بخشے گئے، تو آخری رات جو رمضان کریم کی ہے وہ بڑی رحمت کی رات. پھر اس نے ایک اور رات بھی رکھی گئی جس کو شب قدر سے یاد کیا جاتا. کیا ہے شب قدر؟ اتنا انزل نہ ہوگی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. شب قدر کیا ہے پہچانتے ہو؟ شب قدر وہ ہے کہ جو ہزار مہینوں کی عبادت سے اس کی ایک رات کی عبادت کرے، خیر بہتر ہے. ہزار مہینوں کا اگر آپ حساب کریں تو آپ کی عادت یعنی ایک رات کی عبادت کر دیے تو 80 سال کا ثواب ملتا ہے. وہ رحمت وہ کرم کی رات ہے، تو چونکہ وہ رحمتوں کی اور کرم کی رات ہے، اگر وہ معلوم ہو جاتی تو ہم خود سے قائل ہو جاتے ایک بات سے اس کو رات میں رکھا گیا ایسا ہوا کہ بدل بدل کو بھولو. رمضان شریف میں ہوتے مگر اس کے ساتھ ساتھ استاد جہاں مہربان ہوتا ہے تجیب ہوتا ہے، تو شاگردوں کو اپنے خاص خاص چیزیں بتائیں. دیکھو بیٹے ذرا سلحان سوال دیکھ کے جاؤ. उनके से देखो बेटा सुना सुना मकामल को हाथ में देंगे ऐसे हाथ मकामल की जिस तरह घटी को साथ बता देता है उसी तरह रिसारत नाथ सुल्लाह कुर्बान जाइए मेरे सरकार के कि अपने गुलामों को हाथ हाथ कर नहीं बताए। सरकार आलम को मालूम था कि मेरे गुलाम इतने कहा है कि वो तमाम महीना जागे ढूंढे उसको तमाम साल सदर सदर का तो पहले जागी नहीं रही है कि सदर सदर रमजान ही नहीं होगी साल में एक मतलब आती है सदर सदर उसको ढूंढो का हुक्म उसके फजाइल बयान में वो क्या सरवर आलम सुल्लाह ने फरमा दिया कि वो उसके बाद पूरा महीना रमजान का जागे की तवक्को नहीं है तो और मजीद सलाह फरमाई कि रमजान के आखिरी दहे में ढूंढो आखिरी दहा जीत से लेकर चांद रात आखिरी दहे में ढूंढो। उसके बाद सरवर आलम सुल्लाह को ख्याल हुआ कि क्या मेरी उम्मत कितनी भी ये इतने मेहनती भी नहीं है कि दस दिन शायद रमजान चले के आखिरी रातों में जागेंगे फिर एक मजीद और सलाह फरमा दी कि उसने दिन साफ रातों में जब कितने इक्कीस से जब यही थी जब आखिरी नए में अपनी वो भी सात रात में दस के बजाय पांच तीस के बजाय दस सुबह दस के बजाय पांच की तरह भी फरमा दी तो ये ढूंढने का हुक्म है तो ये रात वो बजाय और बरकत की रात है जो आइंदा मरीज में मगर किस्मतों का फैसला किस रात में होने वाला है उसको रात नहीं रखा गया वो क्या है वो आज की रात है इस रात को रात में नहीं रखा गया सुना दिया ये देखो चले बारा जो वस्ते शाबान की रात है इस रात में अल्लाह ताला फैसले तमाम सारे फरमाता है उजारों अरल मारूस कर लो ऐसा नहीं कि गफलत की नींद में सोते पड़े रहोगे तो क्या बहुत बड़ी रात ये शाबान का महीना बड़े बरकतों का बड़ी रहमतों का महीना है आदि से है कि दरबार आलम सुल्लाह रजब और शाबान में कसरत से रोजे रखते कसरत से रोजे रखते बाद में सहाबा फरमाते हैं कि कितना मुसलसल सच्चा रोजे रखते थे जो उनके शायद इतवा था होता था कि अब साहब रमजान के खत्म तक शायद इतना नहीं फरमाएंगे उनके बाद में किसको इसी वजह से कल का रोजा अल्लाह शाबान के लिए भी बड़ी फजीलतों का रोजा है बड़े बरकतों का रोजा है जो हजरात रख सके शबे बारात ये आज की रात जो है क्या है आज की रात मुताल्लिक हदीस में है दीदी आयशा फरमाते हैं कि आज ये यानी पंद्रहवीं चलने शाबान की मेरे पास सरकार आलम सुल्लाह की बारी थी सरकार अल्लाह की बहारा की बारियों का बड़ा इस्तेमाल फरमाते थे और कुछ भी नहीं है वो लोग इस्लाम ने जहाँ चार निकाह की इजाजत दी है वहाँ साथ साथ उसके अधिका भी हो गई है क्या है अरे किसी की जो बीवियाँ हैं तो एक दिन एक रात की कितनी बार रहे तो जो दूसरे दिन में रहेंगे चार एक दूसरा दिन और रात दूसरी दिन के बाद इसी तरह चार तक की जाते चार दिन या छुट्टी हुआ तो बराबर एक दिन उसके पास एक दिन उसके पास एक दूसरे कमी नहीं तो सरवर आलम सुल्लाह बारी का बहुत ज्यादा अहतमाम फरमाते थे बीवी आयशा फरमाती है कि पंद्रहवीं तक सामान की थी और बारी मेरी थी सरकार आलम सुल्लाह मेरे पास उसकी लाए और आराम फरमाए इसको लाए के बाद मैं देखी कि सरकार साजू नहीं थे तो मुझे शुभा हुआ कि शायद दूसरे अजाजी सहारा के पास कहीं मुश्किल ले गए थे तो सरकार आलम सुल्लाह अल्लाह कौन है मेरे आका वो है कि जिनके मुताले इर्शाद होता है कि लौला का लमा खलकुल अखलाक क्या है आचार्य अभी अगर आप लोगों के बनना ये आसमान भी पैदा करते हैं ना जमीन पैदा मेरे अभी वो सरकार वो है कि जिनके चश्मों अमरू को खुदा की रहमत देख रही है इधर जरादी हो एक इशारा उसी का हो जाए पार बेड़ा निगाह चश्मे करम खुदा की तुम्हारी किस्मत को लग उनके इशारे पर सबको जो रहा है वो सरकार जिनके मुताले फरमाते हैं क्या मक्के के पहाड़ मेरे से अर्थ किया अर्जुल्ला अगर आप सुनेंगे क्योंकि सरकार तकलीफ की जिंदगी में पसंद करना चाहिए तो पहाड़ों ने अर्थ किया अर्जुल्ला अगर आप सुनते तो हम सुनने के हो जाते मुझे तो रात में किस तरह आराम फरमाते हैं रात किस तरह आराम फरमाते हैं सरवर आलम सुल्लाह कि सरकार के महल सराने चराम नहीं होता अंधेरे में आराम फरमाते हैं क्योंकि अंधेरा था नीचे ऐसा फरमाती है मैंने हाथ से कटोर के देखा हाथ बढ़ाया अपना तो मेरा हाथ जाकर सरकार के सदर वार पे लगा मैं जल्दी के नहीं सकता उत्तर मस्जिद में देख लिया हूँ कि सरवर आलम सलाम सजदे कर रहे और अपने परवरदिगार से अरब मालूम हो रही क्या हो रही है, क्या दुआएं हो रही है, दुआएं हो रही है परवरदिगार से गरीब मान करो, परवरदिगार से मेरे खताओं को माफ करो, परवरदिगार से मुझ पर रहम करो, इतने की दुआएं फरमा रहे। जब दुआओं से सजदे से सर उठाया तो दीदी आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, क्या दुआएं फरमा रहे थे आप अम्बिया मासूम उनसे कोई गुनाह का सिवा नहीं है फिर आपको सिलेबल नहीं है, इसके सिवा मजीद अल्लाह ताला ने आपको आपसे कोई दरविश नहीं होगी तुम्हारी आएगी। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको मजीद खुशखबरी दी क्या माता खतना माता खतर की हमने तुम्हारे अगले कितने तमाम खतें अगर चाहे भी तुम्हारा कर दी ये तालीम है इशारत में आपको वाकई में ये तालीम दी है कि शुक्र गुजारी है कि हमेशा अपने खुदा के सामने सर झुकाकर हमने और जहाँ बंदा लड़ा उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने खुदा के सामने सर झुकाकर आप जिंदा हो जाता है उसके साथ ही अल्लाह की रहमत आती और ही आती है रहमत, ये नुस्खा है अल्लाह की रहमत माला वाले ये जरा सवाल कर गिर गिरा कर आंखों में आंख खुला कर अपने खुदा की तरफ कर आपने देखा दुनिया में क्या होता है बच्चा सर कैसे करता है जवाब देता है तो अहकाम की तामील नहीं करता तो माँ खफा होती थी कान पकड़ कर जब हरकत समझाया उसके बाद भी नहीं माना तो कान पकड़ के सर दरवाजे के बाहर चल खबरदार अगर घर में खत्म रहेगा तो बुरी तरह गुस्से का इंतजार है ये बच्चा समझ रहा है कि शायद मेरी अम्मा मेरे सिस्टर को माफ नहीं दे घर में आने नहीं दे रही है खाना बंद कर दिया है घर में आने की इजाजत नहीं है। अब ऐसे वक्त पे नुस्खा क्या है नुस्खा यह है कि आके उन्होंने अम्मा जान खुश हो गया नहीं अब से नहीं करता मैं आके वादा कर रहा हूँ अब से नहीं करता जहाँ धोया आंसू आए छाती माँ की मोहब्बत को जितना उठा के खबरदार तमाम कुटुंब मिल गए सब भूले गए आंख में आंसू आते ही तमाम भूले गए लगा दिया वो परवरदिगार जिसको सत्तर भाव से दिया ना मोहब्बत है जहाँ बंदा सामने सर झुकाया और आंखों में आंसू लाकर गिड़गिड़ाया कि माले गुनाहगार हूँ खतावार हूँ लेकिन मेरी खताया खाबी ने वहां भी नहीं तू अगर मेहनत करे तो कौन पहुंचने वाला है और उसके साथ मजीद अगर अल्लाह की रहमतों से माला माल होना है तो एक नुस्खा दूसरा यह है परवरदिगार सच्चे में मोहम्मद रसूलुल्लाह के परवरदिगार सबका और दूसरा हूँ की बाबा जी हमारे क्या है परवरे आलम सलातुल्लाह वास्ता अम्बिया ने उनके वास्ते से दुआ मांगी अम्बिया ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जो कबूल नहीं क्यों कबूल नहीं यही हजरत आदम से सीखा गया कि हजरत आदम से सरवरे आलम का वास्ता लेकर दुआ की जब दुआ की तो आपकी तौबा कबूल हुई और इरशाद हुआ आदम तुमको ये हमारे मदर का नाम कौन बता क्या करो दुआ उस वक्त तुम्हें मेरी तकलीफ समझ में आई और मेरे जिस्म में रूह छूटी गई तो सबसे पहले मैंने सजदा किया और सजदे में जब कर उठाया तो अर्शे मोहल्ला पर लिखा हुआ देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं उसका रख दिया कि बनो दिया कि तेरे प्यारे नाम के साथ इसका नाम ऐसा दुआई हमारे वो महबूब है कि जिनके खातिर कायनात की तकनी कमल में आई तो वो मुझे याद नहीं था भूला हुआ था जब ये मुझे याद आया तो मैंने उनकी उस महबूब के वास्ते से दुआ की तो इरशाद हुआ आदम तुमने उनका नाम लेने की वजह से तुम्हारा फितर माफ हुआ अगर उनका नाम न लेते तो तुम्हारी तौबा उम्र भर कबूल ना होती उम्र भर कबूल ना होती ये बोल रहे मुझे तो नुस्खा कामयाबी का यही है कि सरवर आलम सलाह का दामन थामो उनके वसीले से दुआ मांगो उनका सत्ता मांगो जहाँ कहीं भी हो जाते अगर यार दुआएं मांगी ये सारी